नमस्कार, आज हम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है परमात्मा की सर्वोत्कृष्ट कृति नारी, उसके एक अहम अध्याय पर बात करने वाले हैं। अध्याय का नाम है समुन्नत परिवार सुसंस्कृत नारी ही बना सकेगी। तो आज हम कोशिश करेंगे वंदनीय माता जी के विचारों को समझने की कि कैसे एक सुसंस्कृत नारी, आप कह सकते हैं एक उन्नत परिवार की, एक मजबूत परिवार की नींव बनती है, और हां, इसका व्यक्ति पर और समाज पर क्या असर पड़ता है। तो चलिए इसको थोड़ा और खोलते हैं। असल में ये जो अंश है, ये परिवार को व्यक्ति और समाज की धुरी मानता है, मतलब वो जगह जहां अच्छे संस्कारों की पहली शिक्षा मिलती है। वंदनीय माताजी कहती हैं कि परिवार एक तरह की पाठशाला है जहां से समाज को
चमकाने वाले मणि मुक्तक
वो निकलते हैं। सोचिए, अगर व्यक्ति और समाज दो पहिए हैं तो परिवार उनकी धुरी है। अब अगर धुरी में ही गड़बड़ी हो तो प्रगति का रथ आगे कैसे बढ़ेगा? मुश्किल है ना?
हाँ, बिल्कुल। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यही है कि परिवार को व्यक्ति और समाज के ठीक से चलने के लिए कितना बुनियादी माना गया है। इसका मतलब तो साफ है, जैसे व्यक्ति को काबिल बनाना है, समाज को बेहतर बनाना है, वैसे ही परिवारों को सुसंस्कृत बनाने पर पूरा ध्यान देना ही होगा। ये सिर्फ कोई प्राइवेट मामला नहीं है, बल्कि समाज की उन्नति का एक केंद्र बिंदु है।
सही कहा। अब बात और भी महत्वपूर्ण हो जाती है जब हम पारिवारिक व्यवस्था में नारी की भूमिका पर आते हैं। पुस्तक में ये कहा गया है कि यूं तो परिवार हाँ पुरुष और नारी दोनों के मिले जुले प्रयासों से ही चलता है, पर घर को ठीक से चलाने की, सुव्यवस्थित रखने की जो मुख्य जिम्मेदारी है वो नारी के कंधों पर आती है।
बिल्कुल।
तो सवाल उठता है, ऐसा क्यों? वंदनीय माताजी का तर्क ये है कि पुरुष को तो अक्सर आजीविका कमाने के लिए घर से बाहर ही रहना पड़ता है, तो ऐसे में घर में ज्यादातर समय नारी ही रहती है, और उसी का व्यक्तित्व, उसकी सोच घर की हर चीज पर, घर की व्यवस्था पर, और हाँ परिवार के सदस्यों पर अपनी छाप छोड़ती है। ये एक लगातार चलने वाला प्रभाव है।
हाँ, और इसी ठोस कारण से वंदनीय माता जी नारी को परिवार के स्तर का मेरुदंड मानती हैं, मतलब रीढ़ की हड्डी। अगर इसे हम थोड़ा बड़े नजरिए से देखें तो एक सुसंस्कृत परिवार में हर सदस्य को घर में ही एक तरह की, आप कह सकती हैं, स्वर्गीय सुख शांति मिलती है और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी। और इसका श्रेय वंदनीय माता जी सुसंस्कृत नारी को ही देती हैं। और यहाँ सुसंस्कृत से उनका मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान से नहीं है, बल्कि नैतिक मूल्यों से है, विवेक से है, व्यवहार कुशलता से है, घर को सहेजने संवारने की जो कला है उससे संपन्न स्त्री से है।
ये बहुत जरूरी बात है। और वंदनीय माता जी एक और बहुत अहम मुद्दा उठाती हैं। वो कहती हैं कि अगर नारी पिछड़ेपन में जकड़ी है, अगर वो उपेक्षित है, तिरस्कृत है, तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या बन पाएगी? शायद रसोई संभालने वाली, घर की देखभाल करने वाली, या फिर संतान पैदा करने वाली। बस ऐसी स्थिति में वो घर की सीमा में सीमित एक छोटे राष्ट्र यानी परिवार का उसका सही संचालन नहीं कर सकती। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है?
तो मतलब ये है, और ये बहुत साफ है, कि परिवार रूपी संस्था और सुसंस्कृत नारी, ये असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, अलग नहीं है। वंदनीय माताजी के अनुसार अगर हम सच में उन्नत परिवार चाहते हैं, अगर हम समाज को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो फिर नारी को प्रगतिशील, सुशिक्षित और सबसे बढ़कर सुसंस्कृत बनाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। ये सिर्फ नारी के उत्थान का सवाल नहीं है, बल्कि एक स्वस्थ और एक सक्षम समाज बनाने का आधार है, बुनियाद है ये।
बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ सार यही है कि वंदनीय माताजी के नजरिए से देखें तो एक विकसित, एक खुशहाल परिवार का जो ढांचा है वो काफी हद तक एक सुशिक्षित और सुसंस्कृत नारी पर ही टिका होता है, और यही मजबूत परिवार फिर अंत में एक स्वस्थ समाज की नींव रखते हैं। तो मतलब परिवार की संस्कृति और नारी की भूमिका, ये आपस में बहुत गहरे जुड़े हुए हैं।
हाँ, और यहाँ एक विचार करने वाली बात भी सामने आती है ना? आज का समाज देखिए कितनी तेजी से बदल रहा है। स्त्री और पुरुष दोनों की भूमिकाएं पहले से काफी अलग हैं, विकसित हो रही हैं। तो ऐसे में वंदनीय माता जी ने जो पारिवारिक सुव्यवस्था और सुसंस्कारों के सिद्धांत बताए हैं, वो आज कितने प्रासंगिक हैं और उनको आज के जीवन में कैसे उतारा जा सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। क्या परिवार को सुसंस्कृत बनाने की जिम्मेदारी आज भी मुख्य रूप से नारी की ही मानी जाए, या इसमें पुरुष की बराबर की सक्रिय भागीदारी उतनी ही जरूरी नहीं है? ये सोचने वाली बात है।